आगे देखिए आयत 31 से ऑनवर्ड, सुम्मन शान अमिम्बादिहिम करनन आखरीन। फिर इसके बाद हमने एक और उम्मत पैदा की, फिर इनमें ख़ुद इन में से ही रसूल भी भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम क्यों डरते नहीं। हाईलाइट कीजिए इसको, ये है डर, अफला तत्तकून। और सरदारान कौम ने जवाब दिया जो कुफर करते थे और आखरत की मुलाकात को झुटलाते थे, और हमने इन्हें दुनियावी ज़िंदगी में खुशहाल कर रखा था कि ये तो तुम जैसा ही इंसान है, तुम्हारी खुराक ये भी खाता है और तुम्हारे पीने का पानी ये भी पीता है, अगर तुमने अपने जैसे ही इंसान की ताबेदारी कर ली तो बेशक तुम सख्त खसारे वाले होगे। क्या ये तुमसे इस बात का वादा करता है कि जब तुम मरकर सिर्फ खाक और हड्डी रह जाओगे तो फिर तुम जिंदा किए जाओगे? नहीं नहीं, इसको भी हाईलाइट कीजिएगा, है हाथ अलीमा तो हुआ दोन, नहीं नहीं दूर और बहुत दूर है वो जिसका तुम वादा दिए जाते हो। तो फिर इनकी सोच क्या थी, कहानी क्या है, इन ही अल्ला हयात न दुनिया नमू तो व नहया व नहनु बिमबूसिन। ज़िंदगी तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है, हम मरते जीते रहते हैं और ये नहीं कि हम फिर उठाए जाएंगे। लिखे पारे का तीम, जब तज़किया नफ्स नहीं होता, जब तत्हीर नहीं होती, तामीर सीरत नहीं होती, जब फिरदौस गोल नहीं रहती, तो ये बातें सामने आती हैं कि जी मज़ा करो, मौज करो, मस्ती करो, बाबर बैश कोश के जहाँ दोबारा नींद, और दुनिया की ज़िंदगी आखिरत किसने देखी। अल्लाह ताला ऐसे जुमले बोलने से भी बचाए। और नबियों पर एतराज़ क्या होता था, इन हुआ इल्ला रजुलुन, ये तो बस ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बोहतान बांध लिया, हम तो इस पर ईमान लाने वाले ही नहीं। यानी देखिए नबी के बारे में क्या डिटाई का अंदाज़ है इनका, अब अल्लाह नबी के ज़रिए क्या सिखा रहे हैं। काला रब्बिन सुरनी बिमा कज़्ज़बून, नबी ने दुआ की कि परवरदिगार इनके झुटलाने पर तू मेरी मदद कर। जवाब मिला, ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। बिलाखर अदल के तकाजे के मुताबिक इन्हें चीखने पकड़ लिया और हमने इन्हें कूड़ा करकट कर डाला, बस जालिमों के लिए दूरी हो। इनके बाद हमने और भी बहुत सी उम्मतें पैदा कीं, ना तो कोई उम्मत अपने वक्त मुकर्ररा से आगे बढ़ी और ना पीछे रही। फिर हमने लगातार रसूल भेजे, जब जब जिस उम्मत के पास इसका रसूल आया उसने झुठलाया। ये भी तारीख गवाह है, लोग अक्सर झुठलाते ही रहे मुखलसिन को। बस हमने एक को दूसरे के पीछे लगा दिया और उन्हें अफसाना बना दिया, और इन लोगों को दूरी है जो ईमान कबूल नहीं करते। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को और इसके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और खुली दलील के साथ भेजा फिरौन और इसके लश्करों की तरफ, बस उन्होंने तकब्बुर किया और थे ही वो सरकश लोग, कहने लगे क्या हम अपने ही जैसे दो शख्सों पर ईमान लाए, हालांकि ख़ुद इनकी कौम भी हमारे मातहत है। बस उन्होंने दोनों को झुटलाया, आखिर वो भी हलाक शुदा लोगों में शामिल हो गए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब भी दी कि लोग राह रास्त पर आ जाएँ। हमने इब्ने मरियम और इसकी वालदा को एक निशानी बनाया और इन दोनों को बुलंद साफ करार वाली और जारी पानी वाली जगह में पना दी। या युहर रसूल, ए पैगम्बरो, हलाल चीज़ें खाओ और नेक अमल करो, तुम जो कुछ कर रहे हो इससे मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। इसको हाईलाइट करें, यहाँ अल्लाह ताला की तरफ खुद बज़ाहर नस्बत दी जा रही है कि इन्नी बीमा तामलूना अलीम। तो इस वक्त इसको भी शौर से देखिए कि जो कुछ भी इंसान करता है, खाता है, पीता है, लेता है, देता है, वो सब चीज़ें अल्लाह ताला की निगाहों में हैं और अल्लाह ताला उसको देख रहा है। यकीनन तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है और मैं ही तुम सब का रब हूँ, बस तुम मुझसे डरते रहो। फिर उन्होंने खुद ही अपने अमर यानी दीन के आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए। हर गिरोह जो कुछ इसके पास है इस पर इतरा रहा है, बस आप भी इनकी गफलत में ही कुछ मुद्दत पड़ा रहने दें। क्या ये यूँ समझ बैठे हैं? इसको भी हाईलाइट कीजिए, तज़किया और तरबियत नहीं होती तो फिर इंसान ऐसे ही जुमले बोलता है। क्या ये यूँ समझ बैठे हैं कि हम जो भी इनके माल और औलाद को बढ़ा रहे हैं वो इनके लिए भलाइयों में जल्दी करें? नहीं नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं। क्या जुमला ये बोलते थे, ज़रा सा मेरी टोन से समझिएगा। हमारे देसी कल्चर में भी बोलते हैं, ओ जी रब राज़ी है तभी नवाजा हुआ है, जी ये रब खुश है तभी तो चार बेटे दिए हैं उसने। अल्लाह कहता है ये समझते हैं? हालांकि हकीकत ऐसी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। फ़ज़र हम फी गमरती हिम हत्ता हीन, बस आप भी ना इनकी गफलत में ही कुछ मुद्दत पड़ा रहने दें। क्या ये यूं समझ बैठे हैं कि हम जो भी इनके माल और औलाद बढ़ा रहे हैं वो इनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं? नहीं नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशयति रब्बिहिम मुशफिकून, यकीनन जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते। ये हैं तज़किया और तरबियत के नुक्ते। बेहतरीन तज़किया और तरबियत कुरान पढ़ पढ़ा कर होगी, कुरान के तर्जमे के साथ, इसके सीधे साधे मफहूम को खोलकर। बाकी चीज़ों में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। तो क्या सीखा? आइए देखें तदब्बर और अमल के नुक्ते। अल्लाह ताला से इस बात की पनाह मांगते रहिए कि दुनियावी नेमतें आपको इसकी फरमाबरदारी और इसके क़ुरब से रोक दें। तकब्बुर से अल्लाह की पनाह मांगिए क्योंकि वह हक़ कबूल करने में रुकावट है। ये अंबिया कराम की कौमों का क्या मरज़ था? खुद को बड़ा मानते थे और नबियों को छोटा। तो तकब्बुर यही होता है, बतर अल हक़ की वगमतिन नास। अपने खाने पीने से शक व शुबे वाली चीज़ निकाल दीजिए क्योंकि ना इससे दुआएं कबूल होती हैं और ना इससे इबादत कबूल होती हैं। कुरान से रहनुमाई, जालिम बिलाखर बुरे अंजाम को पहुँच ही जाते हैं चाहे इनका ज़माना लंबा महसूस हो। यानी वो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के और 1 दिन शाह का, चोर चोरियां करते 1 दिन पकड़ा ही जाता है। दुनिया में अल्लाह रहमान है ना, जितना मर्जी बचा ले, 1 दिन तो फिर अपने करतूतों पे बंदे की पकड़ होनी ही है अगर तौबा के बगैर दुनिया से चला गया। सिर्फ़ पाकीज़ा और हलाल रिस्क पर इक्तफा कीजिए और नेक आमाल में मशगूल रहिए। अपने आमाल से धोखा ना खाइए बल्कि हमेशा अल्लाह से डरते रहें, यानी खुद को खुद पसंदी के धोखे में ना रखिए। गौर व फिक्र की बातें, जिस जगह भी जाएं इस जगह की बरकत के लिए दुआ करें। कितनी प्यारी दुआ, रब्बी अंजिलनी मुनज़ला मुबारकन। हम लोगों के घरों में जाते दावते खाते पीते आते जाते, ना कोई दुआ ना कुछ, तरीफ़ें करके आते हैं, बड़ा मज़े का था भाभी, बड़ा अच्छा था भाई, ये था वो था, बड़ा इंजॉय किया। सौ सौ क्या हज़ार हज़ार बंदे की शादी की दावत लोग पकाते हैं, एक तो जो उनके ज़ाया करके आते हैं खाने, और दुआ कौन देता है? हाँ, या वहाँ जाके तारीफ़ें कर रहे होते हैं, बहुत कुछ था, बड़ा मज़ा आया, ये था वो था, और घर आके एक एक डिश का पोस्टमार्टम करते हैं और साथ ही फतवा देते हैं, क्या ज़रूरत थी इतना पकाने की, देखो शो मारी। यानी एक शादी में हम 100 कीड़े निकालते हैं। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। खाना कोई खिलाए, बरकत की दुआ दें, कोई आपके लिए कोई राइड का इंतज़ाम करे, बरकत की दुआ दुआ लीजिए, दुआ कीजिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ये सब काम करते थे। हक़ का इनकार करने और रसूलों को झुठलाने में आखरत से बेखौफी और ऐश परस्ती शामिल होती है। यानी ये जो केयरलेस एटीट्यूड दिखता है ना, उसकी वजह पीछे हक़ का इनकार होता है। चलिए सोचिए ज़रा, जहाँ किसी की कोई नेकी याद कीजिए जो आपके लिए की, और उसको दुआ दीजिए यहाँ बैठे बैठे, और घर वालों की नेकियों को ना भूला करें, वो भी आपके साथ बहुत नेकी करते हैं। बीवी मियाँ के लिए पकाती खिलाती कपड़े देती धोती, मियाँ को दुआएं देनी चाहिए उसको। मर्द बेचारे इतना कमा कर लाते, थैलों के थैले पकड़ कर लाते, बीवी को उसको दुआ देनी चाहिए। हम अमूमा नेगेटिव बात करके या जल जाते हैं या जला देते हैं। अल्लाह हमारी इसलाह फरमाए। और ये कब होगा? तामीर सीरत तज़किया और तरबिया के साथ। अल्लाह हमें इस पारे के साथ अपनी तरबियत करने वाला बना दे। आगे देखिए, ये आयत भी बहुत प्यारी है जो आ रही है, आयत 60। वल्लज़ीन युतून मा तवक्कुलुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और जो लोग देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, इनके दिल कप कप आते हैं। यानी अल्लाह के रस्तों में दे दे के भी डर रहे होते हैं, नेकियाँ कर कर के भी डर रहे होते हैं कि वह अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो जल्दी जल्दी भलाइयाँ हासिल कर रहे हैं, और यही हैं जो इनकी तरफ दौड़ कर जाने वाले हैं। विनर्स, टॉपर्स, फर्स्ट आएंगे। जो आज नेकियों में भागेगा ना, जुमले को शौर से बोलूँगी, शौर से लिखिए, जो नेकियों में भागेगा और जो नेकियों के लिए भाग दौड़ करेगा वो जन्नत में भाग के पहुँच जाएगा। लोग अभी ढूंढ रहे होंगे, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, घुटने को पकड़ा हुआ, चला नहीं जा रहा, घूम रहे, हाय 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 कर रहे होंगे, और आप जन्नत में जाकर अल्लाह हाफिज़ कह के अंदर चले जाएंगे। अल्लाह हमें दुनिया में नेकियों में भाग दौड़ करने वाला बनाए, नेक कामों में हिस्सेदार बनाए, और हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा खैर के साथ चला जाए। यही है तज़किया और तरबिया। अल्लाह के आगे झुकिए, ख़ाशियोन बनकर, बंदों के खिदमतगार बनिए, उनके साथ अपनी स्किल्स को, अपनी नेमतों को शेयर करके। आपकी गाड़ी है, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बंदा है ना, गाड़ी तो एक ही है, एक बैठेगा तो भी फ़ायदा उतना ही है, चार बैठेंगे भाई। हम लिए दिए रहते हैं, प्यार और मोहब्बत से नहीं बुलाते लोगों को, शौक नहीं उभारते। लोग दूसरे शहरों में खाना खाने चले जाते हैं, आप जब उनको रग़बत दिलाते, इतना एहसास शौक दिलाते कि आप सुनिए तो, आप देखिए तो, आप तो, कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते। आपको पता है कि जद्दा शहर को लंदन शहर इसलिए भी चुने कि बाहर के लोग भी आ सकें, एक कॉमन सिटी है ना। हज और उमरे पे आने वाले हर साथी का दिल होता है कि वो दौरे कुरान में एटलीस्ट एक दिन तो आके बैठे, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ी ऑनर है कि अल्लाह ने इतने कीमती मुल्क में, इतनी प्यारी जगह में हमें ये कलाम देने का मौका मिला। और आप ख़ुद, मैं कितने खुशकिस्मत है, जहाँ ये कुरान नाजिल हुआ वहाँ बैठ कर इसको सुन रहे हैं। और क्या चाहिए, इससे बड़ी क्या खूबी होगी। तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल कुरान, और अल्लाह भाग दौड़ करने वाला बना दे। लोग तवाफ़ पे तवाफ़ कर रहे होते हैं, कभी गिरते हैं, पड़ते हैं, एक उम्रा किया, आप दूसरा करने जा रहे, तीसरा कर रहे, तो बाकी ज़िंदगी में क्यों भूल जाते हो। घर जाकर गली की मस्जिद में भी तो नमाज की दौड़ लगा लो, यहाँ 7 चक्रों में। मेरा हाल है, डिपेंड करता है आप कहाँ तवाफ़ कर रहे हैं, नीचे करें तो 1.5-2 किलोमीटर ही बनता है, अगर बिल्कुल साथ पहला फेर हो ना, अगर काबा के साथ ही हो तो सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर है 7 चक्कर। और अगर माशाल्लाह अल्लाह तौफीक भी दे और कबूल करे, छत पे अब तवाफ़ कर ले। कल मैंने जान के देखा कि मैं अपने वो रनर में देखूंगी कि ये कितने किलोमीटर है, 5 से 6 किलोमीटर का एक तवाफ़ है। तो जब यहाँ 5-6 किलोमीटर कर ही लेते हो, तो अल्लाह के रास्ते में 5-6 किलोमीटर पे जाकर नेकी का काम क्यों नहीं करते। फिर क्यों कहते हो हमारे पास कोई आ जाएगा तो ठीक है, हम तो नहीं जा सकते। नहीं, रोज़ा है ना भाई, रोज़े में तो ये सब कुछ कर रहे हो, तो यहाँ कोई हम क्या करने आए हैं। लिखिए हज और उम्रे का सफ़र, तरबिया और तज़किया का सफ़र बनाइए। आपने, मैंने अगर उम्रे करने हैं तो इसको अपने तज़किए के लिए करें, हर चक्कर में कोई ख़राबी निकले, ये जो पसीना बहता है ना जिसम से, बंदे के अंदर से एक्स्ट्रा फासद मादे निकल जाते हैं ना, इस तरह तज़किया करके यहाँ से जाइएगा। आप सब भी उम्रे वालों को कह रही हूँ कि आप जाएँ तब जब पूरे पाक हो चुके हों, ऐसे जैसे लाजम बलहू। और अल्लाह आपके मेरे लिए इस पूरे सफ़र को खैर और बरकतों से भर दे। और साथ ही देखिए अल्लाह ने कह दिया वला नुकल्लिफ नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी नफ्स को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। कोई सोच के कह सकते हाय 5-6 किलोमीटर कैसे चले, कोई बात नहीं, आप ट्रॉली पे कर लें, रेडी पे कर लें, व्हीलचेयर पे कर लें, हर तरह की सहूलतें हैं ना। तो कोई अगर घुटनों की तकलीफ़ का मरीज़ है, अल्लाह कहते हैं डोंट वरी, कोई चल नहीं सकता इट्स ओके, बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते लेट जाओ, कुछ नहीं है तो ख्वाहिश कर लो। अच्छा बाहर बैठे हज़ारों लोग कहेंगे हम क्या करें, आपकी मिसालें सारी इस दफ़ा मक्का मुकरमा और मदीना की हैं, तो ला जो कलीफुल्ला नफसन शौक़ का इज़हार कीजिए। और मैं दुआ करती हूँ जो लोग हमारे साथ सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब के भी नसीब में मक्का मदीना का सफ़र बार बार करे। तो राज़ी रहिए बस, आज इधर बैठे हैं राज़ी हैं, अगले साल पता नहीं अल्लाह कहाँ ले जाएगा, राज़ी रहिए, होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ना सही, जो कीजिए दिल की खुशी से कीजिए। मेरी अम्मी एक मेरे बारे में बड़ा जुमला बोलती हैं, कहती तुम जहाँ जाती हो दिल लगा लेती हो, वैसे वो डांट के कहती, इतने प्यार से नहीं कहती, जिधर जाती उधर की हो जाती हो। मैंने कहा बाकी ऐसे ही, मैं दुनिया के जिस कोने से गुजरी हूँ मुझे वो दुनिया का बेहतरीन मुल्क लगा, जिन लोगों से मिली हूँ मुझे बेहतरीन लगे, जो नेमतें दी मुझे लगता है हमारे से ज़्यादा अच्छा मामला अल्लाह ने किसी से नहीं किया। मैं क्या करूँ अब, अच्छे को बुरा कैसे कहूँ, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि रब ने कोई चीज़ गलत नहीं बनाई। वला नुकल्लिफ नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। आप सब जो दीन के काम के मुआविनीन है ना, दी बेस्ट है, मैं दुनिया में भी इसकी गवाही दे सकती हूँ, आखिरत में भी देने को तैयार हूँ, अल्लाह एक दफ़ा मैं बच बचा के ले जाए। बेहतरीन लोगों मेरे इलीट हैं, जितने सुनने आते हैं वो इलीट होते हैं मेरे लिए, उनसे बेहतर कोई शख्स मुझे पूरे शहर में नहीं देखता। खैर है तभी तो आके बैठते हैं ना आप, और सब दर्ज हो रहा है कैसे, वलदई ना किताब यंती को बिल हक, और हमारे पास एक ऐसी किताब है जो हक के साथ बोलती है, इनके ऊपर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा। पूरा यकीन रखिए, आपका नाम कोई ले ना ले, आपको कोई याद करे ना करे, आपको कोई दुआ दे ना दे, आपका नाम उस रजिस्टर में लिखा हुआ है एज़ अंसारुल्ला। बाद लोगों को दिखाने बताने के लिए भी हम कहते हैं शायद उनको बताएंगे तो वो हमारे लिए दुआ करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो सामने होते हैं ठीक है, उनके नाम दिल दिमाग में होते हैं, बाकियों को अल्लाह पे डाल देते हैं कि अल्लाह जिस रस्ते के मुआविनीन है तो उनका मुआविन बन जा। اور جو اس راستے کے مخالفین ہیں تو خود ہی ان سے نپٹ لے. اس خیر کے پیغام کو دریاؤں کے پانیوں کی طرح, سمندروں کے پانیوں کی طرح عام کر دے تاکہ تزکیہ نفس ہو جائے, جوانیاں پاک ہو جائیں. کیا کیا کہانیاں آپ کو سنا سکتی ہوں کہ کیسے اللہ نے کتنی جوانیاں پاک کروائیں, کتنے لوگوں کو خیر ملی اس قرآن سے. بچیاں روتی ہیں, کیسی آتی ہیں ہمارے پاس, سارا ماسٹرز, ایم بی اے اور ایم ایس سی اور ڈاکٹر بنی ہوئی ہیں ماشاء اللہ, دنیاوی تعلیم یافتہ بچیاں آتی ہیں. ایک سال کا کورس جو جوہر آباد سے ابھی چل رہا ہے, اور ابھی گجرانوالہ کے مدرسے میں بھی ہے اور جوہر آباد میں بھی ہے, اور آن لائن پہ بھی سبح السلام کچھ اس طرح سے کورسز بہت سے ہیں. بعد میں ساتھی گاہے بگاہے آپ کو بتاتے رہیں گے, مجھے جو زبانی یاد ہوتے ہیں میں وہی بتاتی ہوں. یہ دو نام کیوں لیے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک سال میں پورا کورس کراتے ہیں. ایک سال میں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا اگلے سالوں میں دو سیشن, پھر اگلے وسط ملتی رہے گی, تین تین سیشنز ایک سال میں ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ. اللہ نے زندگی دی تو ان بچیوں کی جوانیاں بچائیے. یہ لڑکے, یہ بچے, یہ بچیاں بہت پیارے ہیں. ان کے تزکیے کے لیے, ان کی تعمیر سیرت کے لیے ان کو اس قرآن سے جوڑیے. اور اگر اللہ نے آپ کو مجھے ذریعہ بنا دیے تو جب فارغ ہونا سجدے میں چلے جایا کریں, شکر کے سجدے کریں کہ اللہ نے اس کوس سے جوڑ دیا, ورنہ ہم کیا تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو نے خرید کے انمول کر دیا, ورنہ پوچھتا کوئی نہیں تھا ہمیں. آج قرآن زندگی سے نکالیں پھر اپنی ورتھ لیجئے, چار ٹکے کے نہیں رہیں گے ہم. تو اس لیے ریزنٹمنٹ نہیں چاہیے, عاجزی کے ساتھ دین کا کام کریں. یہ نہیں ہوگا, اس کے ساتھ نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. تزکیہ اور تربیہ میں یہ بھی ایک بات نوٹ کیجئے, بڑے شوق سے لوگ آتے ہیں دین کا کام کرنے کے, اور تھوڑے ہی دنوں میں پلٹ جاتے ہیں. میری اس سے نہیں بنتی, میں اس کے ساتھ نہیں لگتا, میں یہ نہیں کر سکتا. قرآن پڑھے ہوئے کے بغیر بندے کے ساتھ میں تو رسک نہیں لے سکتی کوئی نیا کام کرنے کا. اپنے نفس کو کچل کے یہ کام ہوتا ہے, اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کر کے یہ کام ہوتا ہے. پانچ انگلیاں برابر نہیں, یہ دیکھیں یہ ہتھیلی ہے اندر, یہ پانچ انگلیاں کیوں جڑی؟ تو پانچوں کو دیکھیے برابر ہے, اپنی اپنی دیکھیے ذرا. بس یہ ہتھیلی جو ہے نا, یہ الفت ہے, اللہ فر, یہ مقصد ہے, یہ قرآن ہے. قرآن پھر تفاوت ختم کر دیتا ہے. فلیگ پلنگ تو ہمارے انسٹیٹیوٹس میں ہے ہی نہیں ہے, کسی وقت ہم دنیا سے جا سکتے ہیں. تو کیا کام رک جائے گا, ہمارے پروجیکٹ رک جائیں گے؟ نہیں, اللہ سے کہ ہماری زندگی میں ہم سے اچھے اچھے لوگ لا اور ہمارے والے کام وہ کرنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کتاب ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے, حق کے ساتھ بولتی ہے, ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تو سوچ کے لکھیے, سوچ کے بولیے, کیونکہ اس کاپی میں نہیں لکھا جا رہا, اس چٹ چیٹ میں, اس آپ کے میسج میں نہیں کوئی بات لکھی جا رہی, یہ آپ کی اس کتاب حق میں لکھی جا رہی ہے جس کو قیامت کے دن اقرا کتاب بکا کفا بنفسک الیوم حسیبہ کے طور پہ اللہ نے پیش کرنا ہے کہ آج ذرا اپنے لکھے کو پڑھو. جب اپنا لکھا پڑھنا پڑے گا نا, اس دن ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے, اپنا دیکھا دکھانا پڑے گا لوگوں کو, اس دن آنکھیں اندھی ہو جائیں گی کہ اللہ یہ کیا کرتے تھے, کیا گندے بلا دیکھ رہے, سنتے تھے, بولتے تھے. پھر کیا آپ اپنا وقت ضائع کریں گے؟ تو لکھ لیں, مومن کے اس وقت ضائع کرنے کو نہیں ہے. دیر از نو ٹائم ٹو کل, مومن ہیز دا ٹائم ٹو انویسٹ. یہاں ایک جم بنائیے, لکھیے, مومن کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا, اس کو کاروبار میں لگا دو. یعنی دیر از نو ٹائم ٹو کل, وی ہیو اونلی ٹائم ٹو انویسٹ. تو یہ آپ کی میری انویسٹمنٹ ہے, یہ زندگی, یہ وقت, یہ اسکل, یہ بولنا, یہ سننا, یہ بیٹھنا, یہ بھاگ دوڑ, اللہ اس کو قبول کر لے. بل قلوبہم فی غمرت من ہذا, بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں, اور ان کے لیے اس کے سوا بھی اور بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں. پچھلے پارے میں غفلت تھی نا, آج یہاں بتا دیا, نیکیوں کے مواقع یہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ غفلت, پتہ ہی نہیں اجر کتنا ہے, ضرورت کتنی ہے, فائدہ کتنا ہے, اس سے خیر کتنی نکلنی ہے, اس سے فردوس ملنی ہے. آج لکھ لیجیے, آج کے پارے کے شروع میں آپ کے پاس یہ بات آ گئی ہے. پارے کے شروع میں اللہ آپ کے لیے, میرے لیے گول سیٹ کر رہے ہیں فردوس کا. اس سے کم نہ مانگنا, پھر جو مل جائے اس پہ راضی رہنا. فردوس کو گول بنائیے تو پھر جو مل جائے, تو کوششیں فردوس والی کرنی ہے, 33% والی نہیں کرنی کہ چلو پاس تو ہو جائیں. 100% کوشش کیجئے, پھر جو رب دے گا اس میں آپ خوش رہیں گے, میں بھی خوش رہوں, اللہ ہمیں اعلیٰ ہی دے. کیونکہ فردوس کی جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے. تو مجھے تو اللہ سے دور نہیں رہنا, میں تو پہلے ہی تھکی ہوئی ہوں, میں تو پہلے ہی اداس ہوں. کہا کریں اللہ میں آپ سے اداس ہوں, اللہ میں آپ سے دوبارہ نہیں دور ہوں گی. ये सारी कोशिशें, ये सारी खोज, ये सारी भागदौड़ तो तेरी रजा और तेरा चेहरा पाने के लिए। पता चला जन्नत में भी चले गए लेकिन अल्लाह तक नहीं पहुंच सक रहे, क्योंकि क्रेडिट नहीं है, क्योंकि वो सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ, कुछ कमियां रह गई थी। दुनिया में तज़किया तरबिया हो जाती तो हो जाती, अब नहीं हुई तो फिर आज नहीं होगी, कैसे होगा? इसलिए सोचिए इसको। अब ज़रा सोचिए ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने दुनिया का माल दिया और यहाँ खाते पीते लोगों के कुछ जुर्म और बातें हैं। हत्ता इज़ा अखसना मुतरफीहिम बिल अज़ाब, यहाँ तक कि जब हमने इनके आसूदा हाल लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो बिल बलाने लगे। आज मत बिल बलाओ, यकीनन तुम हमारे मुकाबले पर मदद ना किए जाओगे। मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थीं, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते थे। बताइए कितना सच है कुरान में, क्या मसरूफियात हैं जिसकी तरफ भाग भाग कर जाते हो और आयतों को छोड़ देते हो। कुरान तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक ख़जाना खैर का रखा, इसके एक एक लफ्ज़ पे नेकियाँ, इसके एक एक हर्फ पे नेकियाँ, तुम इसको छोड़कर दुनिया में बाज़ारों में खोए फिर रहे हो, ईद की तैयारियाँ कर रहे हो, इफ्तारियाँ सहरियाँ तुम्हें नहीं आने जाने दे रही, तो आराम से बैठो फिर, अकड़ते ऐंठते अफसाना कोई करते इसे छोड़ देते थे। आज देखिए रमज़ान में भी लोग ट्रांसमिशन से नहीं बाज आते, उसको एक हल्का सा मज़हब का नाम देकर रंग देकर पेश कर दो, चले कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए। आज भी सोशलाइजिंग नहीं माफ, खुदा के लिए लंबी चौड़ी इफ्तारियों से परहेज़ कीजिए। जो इफ्तारी आपकी मगरब की नमाज़ खा जाए या आपकी तरावियाँ चली जाएँ उसमें क्या अजर मिलना है, और जिस इफ्तारी में 50 लोगों का खाना पकाकर खातून खाना को रोज़े का अजर सिर्फ 10 का ही मिलना है, बाकी सारे बेरोज़ थे, तो ये तो फिर दुनियादारी है। उनको खिलाइए, उनको पिलाइए, उनको बताइए, उधर भेजिए जिनको ज़रूरत भी है। कितने लोग हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, बेचारे मुसाफिर हैं, कोई कहीं रास्तों में फंसे हुए हैं, कोई काम से आए हैं, मस्जिदों में बनाकर भेज दीजिए, वहाँ औरतों में हिसाब किताब की फ़िक्र पड़ जाती है। अच्छा 100 लोगों की इफ्तारी कराएंगे तो फिर तो 1 लाख रुपया लग जाएगा। यानी उसको खिलाएं जिसको ज़रूरत है, तलब है। हम उनको खिलाते हैं जिनके अपने घरों में फ्रिजें नहीं बंद हो रही, पिछले दिन का खाना इतना बचा है। तो याद रखिए कि आज अपनी एक एक चीज़ को इन्वेस्ट किया करें। आजकल यहाँ आपको पता है कि जब बाद में लोग साथी जाते हैं, तो कल एक सिस्टर से बात हो रही थी, तो अक्सर खाना जब लोग ऑर्डर करते हैं तो वो ज़्यादा होता है, यहाँ आपको पता ही अंदाज़ा ऐसे ही मक्का में ख़ास तौर पे, तो वो लोग खाते हैं ना तो जो बाकी होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है। 2 दफ़ा हमारे सामने हो चुका है कि अगले टेबल वाले जब खाली करते हैं टेबल पर खाना होता है, अब वो जो क्लिनिंग बॉय होते हैं वो फेंकते हैं, तो हमने मना कर दिया। कल रात मैंने वो चावल खाए जो किसी और के टेबल पर थे, क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी अकड़ है आपके अंदर कि आप गर्म खाएंगे ठंडा नहीं खा सकते। अभी थोड़ी देर पहले उसने इसका इतना महंगा बिल दिया है और वो आपके लिए ख़राब हो गया कि ठंडे हो गए, गर्म करा लीजिए। अपनी आप को कम करें, अकड़ कम करें। नहीं नहीं गर्म खाते नहीं, अच्छा नहीं लगा फेंक दिया, वल्लाही ये फिर आपको फ़ायदा नहीं देंगे। हर जुमरे और अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं, पहले बताएं एक 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 चावल का दाना ज़ाया नहीं करोगे, फिर लेके जाऊंगी। बर्गर मंगाया है खाना पड़ेगा, नहीं खाना किसी को खिलाओ, बैठ के सामने खिलाओ। अल्लाह हमारे दिल खोल दे, हमें माफ़ करे, हमारे अंदर कितने जरासीम आ चुके हैं। तो लिखिए तज़किया और तरबिया इस चीज़ का नाम है कि बंदे को हर वक्त इस चीज़ की फ़िक्र पड़ जाए। अफलम यदब्बरुल कौल, क्या उन्होंने इस बात में गौर व फिक्र ही नहीं किया, बल्कि इनके पास वो आया जो इनके अगले बाप दादाओं के पास नहीं आया था, या उन्होंने अपने पैगंबर को पहचाना नहीं कि इसके मुनकर हो रहे हैं, या ये कहते हैं कि इसे जुनून है, बल्कि वो तो इनके पास हक लाया है। हाँ इनमें से अक्सर लोग हक से चिढ़ने वाले हैं। ये नोट कीजिए जुमला, जो हक बात करेगा ना लोगों को बुरा लगेगा। आप देखिए जब हम छोटे थे माँ बाप जो हक बात करते थे हमें बुरे लगते थे, ज़रा से बड़े हुए तो उस्ताद जो अच्छी बात कहने लगे हमें बुरी लगी, आज उलमाए दीन ज़रा हक बात करें तो हमें बुरा लगता है। नफ्स सरकश घोड़े की तरह भागना चाहता है, तो लोग तो चिढ़ेंगे हक से, कहा कोई बात नहीं, हक बात से तो ये चिढ़ जाते हैं। अगर हक ही इनकी ख्वाहिशों का पैरू हो जाए तो आसमानों ज़मीन और इनके दरमियान की हर चीज़ धरम बरम हो जाए। हक तो ये कि हमने इन्हें इनकी नसीहत पहुँचा दी, लेकिन वो अपनी नसीहत से मुँह मोड़ने वाले हैं। अम तसअलुहुम खर्जन, क्या आप इनसे कोई उजरत चाहते हैं? ये भी एक पॉइंट होता है, कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितनी फ़ीस है, क्या देना पड़ेगा? कोई चंदा? कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी के बाहर कोई चंदा बॉक्स नहीं था, अल्लाह के नबी ने कभी अपनी फ़ीस नहीं रखी थी कि मुझसे मिलोगे तो ये फ़ीस पे करके अंदर आना, फिर भी नहीं लिया लोगों ने, फिर भी उनको कदर नहीं थी, बल्कि फिर ज़्यादा ही बेकदरी होती कि अच्छा तो मुफ्त ही है ना, कौन सी इसकी फ़ीस है, रजिस्टर ही किया हुआ है ना, कुर्सी रखी हुई, आया ही नहीं बंदा, कोई बात नहीं, इस ओके। अल्लाह कहते हैं ये कोई तुमसे उजरत मांगते हैं, याद रखिए कि आपके रब की उजरत ही बहुत बेहतर है। तुम क्या दोगे, तुम्हारे पास है ही क्या, तुम तो खुद कंगाल हो। वो जो देगा उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, और वो सबसे बेहतर रोज़ी रसां है। यकीनन आप इन्हें राह रास की तरफ बुला रहे हैं। ये कितना तस्कीन देने वाला जुमला अल्लाह अम्बिया को कहता था। आज हर दाई दीन बताने के बाद, लोगों के तज़किया और तरबिया की कोशिश करने के बाद, पढ़ाने के बाद ख़ुद से पूछे, क्या मैं लोगों को राह रास की तरफ बुला रही हूँ या उससे दूर? और अगर उस तरफ बुला रहे हैं तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अला नेमतिल हिदाया, खैर दीजिए। आपकी कोशिशों से माशरे का तज़किया हो, जवानों की इज्ज़तें बच जाएँ, नज़रें पाक हो जाएँ, नमाज़ों में खुशूखुदू हो जाए, यही है इस बारे में। और अल्लाह इसमें हमें खपा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रुक पूरा हुआ 73 आयत पे, बोलिए शऊर से अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल कुरान। आगे देखते हैं आयत नंबर 74, वइन्नल्लज़ीन ला यूमिनून बिल आखिरा, बेशक जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो सीधे रास्ते से मुड़ जाने वाले हैं। आते आते रास्ता मुड़ जाते हैं, थोड़े दिन आते हैं फिर छोड़ जाते हैं, निकलते हैं फिर आते हैं फिर छोड़ देते हैं, कहते नहीं अच्छा आप चलिए मैं आती हूँ, कौन आता है, कोई नहीं आता, अच्छा आप जाएँ ज़रा मैं थोड़ा सो लूँ फिर आऊँ, कोई नहीं आता, उठेगा कब, जब वक्त भी चला गया होगा। तो दुआ कीजिए अल्लाह हक के रास्ते पे आते आते हमें कभी ना मोड़ना। और कैसे बंदा मुड़ता है, कोई वसवसा आ गया छोड़ दिया, किसी ने शक डाल दिया तो छोड़ दिया, किसी ने शुबा डाल दिया तो छोड़ दिया, किसी ने कोई और चीज़ दिखा दी तो उसमें चले गए, चलो अब उसको देखते हैं, अब उसको पढ़ते हैं, अब ये करते हैं, तो काबुल में रहते हैं खुद वहीं के वहीं, और वो सारे दीनदारों ने जन्नत में पहुंच जाना है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करके एक लाइन को पकड़िए, बच्चा बचपन में कच्ची पक्की से होता हुआ मैट्रिक में आता है, फिर FA में जाता है, फिर BA में, फिर मास्टर्स, ये तरतीब दीन में भी कायम रखिए, तो आप देखेंगे कि कल किसी काबिल हो जाएंगे आप भी किसी को सर्व करेंगे। और रह गया सिर्फ शौक़, तो ये ठरक है, अब मैं ये कोर्स कर लूँ, मैं तजवीज़, कुरान नहीं आता, तज़किया नहीं, नमाज़ नहीं, खुशू नहीं, और लोग दो दो चार चार साल सिर्फ ग्रामर सीखने पे लगा देते हैं। ग्रामर पढ़कर आप जन्नत में नहीं जाएंगे अगर आपकी नमाज़ में खुशू नहीं है, आपकी नज़र पाक नहीं है। इवन तजवीज़ पूरी अच्छी करके भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे अगर आपका तज़किया और तरबिया नहीं हुआ। सब साथ लेकर चलिए, कंप्लीट पैकेजेस दिए जाते हैं कोर्सेज में, स्पेशली सबीलुल जन्ना में, हर वो चीज़ उस वक्त दी जाए जब सुनने वाला अखज़ करे। और जो चीज़ें सबीलुल जन्ना में दी जाती है वो पर्सनल ग्रूमिंग की, आपके अपनी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कॉन्सेप्ट, अकीदा ठीक हो, फिर आगे नूरुल्ला नूर में देने वाले बनाने की स्किल्स दी जाती हैं। तो डॉक्टर को पता होता है ना कब क्या देनी है दवाई, इसी तरह एक दाई दीन और एक उस्ताद को, एक इंस्टीट्यूट को भी बताना चाहिए कि पढ़ने वालों की ज़रूरत क्या है, उनको क्या दिया जाए। एक कोर्स होता है 8-9 साल में कराया जाता है आम और ख़ासा का, 8 साल कौन लगाता है, हम उसी 8 साल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर आपको देते हैं, लगते 8 नहीं 20 साल, पूरी ज़िंदगी लग जानी है आप, लेकिन आपको पहले वो मिलेगा जो पहला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कई जगह मैंने देखा 6-6 साल हो चुके होते हैं अभी कुरान नहीं शुरू होता, पहले फिक पढ़ते, पहले और चीज़ें पढ़ते, और आखिरी 1-2 सालों में बस जल्दी में कुरान के तर्जमे से गुजार देते हैं। ये गलत तरीका है, तरबियत और तज़किया होगा तो कुरान से होगा। आयत नंबर 75, वलौ रहम ना हम, और अगर हम इन पर रहम फरमाएं और इनकी तकलीफ़ें दूर कर दें तो ये तो अपनी अपनी सरकशी में जमकर और बहकने लगे, और हमने इन्हें अजाब में भी पकड़ा, ताहम ये लोग ना तो अपने परवरदिगार के सामने झुके और ना ही आजी इख्तियार की, यहाँ तक कि जब हमने इन पर सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल दिया तो वो इसी वक्त फ़ौरन मायूस हो गए। वहुअल्लज़ी अंशअ लकुम अस्समअ वल अबसार, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल पैदा किए मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। देखिए कैसी बात है, और वही है जिसने तुम्हें पैदा करके ज़मीन में फैला दिया और इसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे, और वही है जो ज़िंदा करता है और मारता है, और आज दिन के रद्दो बदल का मुख्तार भी वही है, क्या तुमको समझ बूझ नहीं? कैसा थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल है, लिखिए। तज़किया का बेहतरीन अंदाज़ वही है जो अल्लाह के नबी ने इख्तियार किया उस शख्स को, उस सवाल के जवाब में जिसका पारे के शुरू में तस्करा हुआ। कुरान भी यही अंदाज़ इख्तियार करता है, अंदर की खैर उभरती है जब थोड़ी सी बात करके छोड़ दे, देख लो, कर लो, सोच लो क्या होगा, जो कहती हो कर दूंगी, लेकिन फिर बाद में हमें नहीं कहना, बस काफ़ी बात समझ आ जाती है बंदे को अगर उसका अंदर ज़रा सा सेहतमंद हो, और अगर ख्वाहिशों और शहवात का कोई भूत सवार हो तो बच्चियाँ या बच्चे या कोई भी क्या कहेगा, नहीं 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 आपको नहीं पता, मुझे सब पता है, ठीक है करजमा लो करके देखना। हाँ तो अल्लाह ताला ने अंदाज से बता दिया है कि इनको हर वक्त ये ना कहते रहो गलत कर रहे हो गलत कर रहे हो, बल्कि इनको क्या कह दो, अगर तुम्हारी अक़ल में आ रही है तो ठीक है। बल कालू, बल्कि इन लोगों ने भी वैसी ही बात कही जो अगले कहते चले आए कि क्या जब हम मरकर मट्टी और हड्डी हो जाएंगे क्या फिर भी हम ज़रूर उठाए जाएंगे। ये देखिए डाउट था ना दिल में, उसी डाउट की बात हो रही है इसमें भी। हमसे और हमारे बाप दादों से पहले ही ये वादा होता चला आया है, कुछ नहीं ये तो सिर्फ़ अगले लोगों के अफसाने हैं। पूछिए तो सही कि ज़मीन और इसकी कुल चीज़ें किसकी हैं, बतलाओ अगर जानते हो, फौरन जवाब देंगे कि अल्लाह की। सोचिए, कह दीजिए कि फिर तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल करते, दरियाफ्त कीजिए कि सातों आसमानों और अजमत वाले अर्श का रब कौन है, वो लोग जवाब देंगे कि अल्लाह ही है, कह दीजिए फिर तुम क्यों नहीं डरते। देख रहे हैं आप, हर आयत तकरीबन किसी सवाल के साथ ख़त्म हो रही है, किसी ऐसी चीज़ के साथ कि जिससे इनको फील हो जाए कि ये जो कर रहे हैं इसका अंजाम ये खुद भुगतेंगे। कुल मम यदि ही मलकूत कुल्ली शयन, पूछिए कि तमाम चीज़ों का इख्तियार किसके हाथ में है, जो पनाह देता है और जिसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता, अगर तुम जानते हो तो बतलाओ, यही जवाब देंगे कि अल्लाह ही है, कह दीजिए फिर तुम किधर से जादू कर दिए जाते हो, हक ये है कि हमने इन्हें हक पहुंचा दिया है और बेशक ये झूठे हैं। तदब्बुर और अमल, आयत 60 से कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ गौर व फिक्र की आदत भी अपनाइए, फ़ायदा हो रहा है आपको तदब्बुर और अमल के नुक्तों से। इस दौरे कुरान का ये एक बहुत यूनिक पॉइंट है कि आपको हर चीज़ कंसाइज करके एंड पे दे दी जाती है, अब अमल करके तज़किया करना कराना हमारा काम है। अल्लाह ताला ने आपकी जो मुसीबत दूर कर दी हो इसे याद कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा करें। चलिए चंद सेकंड सोचिए, कोई तकलीफ़ मुसीबत आई हो और अब नहीं है, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाजुरनी फ़ी मुसीबती वाखलुफली खैरम मिनहा, अल्लाह मुझे उसका बेहतरीन बदला दे दुनिया में भी और आखिरत में भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए कि हम भी अल्लाह के यार हमने आना है और उधर ही पलट कर जाना है, कैसी ठंडक महसूस होगी। अल्लाह से दुआ मांगिए कि तमाम मुसलमानों की तकलीफ़ें और मुसीबतें दूर कर दे। चलिए शऊर से सारी इंसानियत के लिए दुआ करें, बिलख़सूस मुसलमानों के लिए। कुरान से रहनुमाई, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने को याद कीजिए। तज़किया का बेहतरीन नुक्ता, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो लिखिए अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये छोटा सा जुमला लिख कर अपने घर में मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाएं, ये एक्टिविटी है इसके साथ। मुसीबत का अगर वक्त आ चुका हो तो अल्लाह के और करीब हो जाइए। देखिए बच्चे को दर्द होती है ना तो माँ से चिपका रहता है, ये बच्चे की आदत है ना। जहाज़ में जब एयर गैप्स आते हैं शेक होता है जहाज़ तो कहते हैं सीट बेल्ट बांध लें, ये तो हो गई दुनिया की मिसालें। अल्लाह के साथ मामला क्या है, जितनी तकलीफ़ आए अल्लाह के और करीब हो जाए। उर्दू में कहते हैं माँ मारे बच्चा मामा पुकारे, कभी माँ गुस्से में आके बच्चे को मारती है ना तो बच्चा माँ ही की गोद में आता है, नानी दादी फूफो खाला बुलाए भी तो बच्चा रोता है। तो अल्लाह का कुर्ब आपके लिए एक तो उस तकलीफ़ को राहत में बदल देगा और दूसरी बात है कि आपके लिए आगे बड़े खैर के रास्ते खुलेंगे। अल्लाह की बुर्दबारी पर लोग कितना ज़्यादा धोखे में पड़े रहते हैं, इसको सोच कर दावत को आम करने की कोशिश कीजिए। गौर व फिक्र की बात है, किसके दिल में कितना ईमान है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए आपको मुझे किसी को कोई फतवा देने का हक नहीं है। हक का रास्ता ही काबिल इत्तबा है और लोगों की कामयाबी राह हक की पैरवी में है। अगर आदमी के पास इल्म हो तो वो हिदायत की खातिर काफिरों से बहस मुबाहसा कर सकता है। अगर अल्लाह किसी को तकलीफ़ देना चाहे तो किसी के अंदर ताकत नहीं कि उसे बचा सके और इसकी हिफाजत कर सके, इस पर यकीन रखिए। जो दुख आना होता है ना वो माँ बाप के होते हुए भी आ जाता है, और जिनको नहीं मिलने होते बिन माँ बाप के बच्चे राज करते हैं दुनिया में। तो कोशिश तो करें दुआएं तो करें लेकिन अपने आप को औलादों के नसीब के लिखने वाला ना समझें,